इसलिए फरमाए तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुबतला हो रहे हो, जबकि हाईलाइट कीजिएगा वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस सलाम की तरफ दावत दे रहा है। अब आप और मैं इस इन्विटेशन पे क्या कहते हैं ये अल्लाह जानता है। देखिए दारुस सलाम की तरफ इनवाइट कर रहा अल्लाह। दुनिया में कभी आपको किसी ने इनवाइट किया? इमेजिन करें, जब अल्लाह आपको इनवाइट करे तो क्या होगा। मिसाल अगर आपको किसी पार्टी का इनविटेशन लेटर मिलता है, अब आपको वो पता चलता है वो माशाल्लाह पीसी में या कोई और इससे भी कोई बड़ा बीसी डीसी हो, कोई 8-9 स्टार होटल हो, हमें नाम भी नहीं पता है, बस जगह नहीं पता, कभी गए नहीं, क्या ये सोच कर वो कार्ड छोड़ देंगे कि पता नहीं किधर है, रास्ता अजनबी है, कभी गई नहीं, फिर अकेली हूं, फिर क्या होगा, कैसे होगा? कभी भी नहीं रुकेंगे। फिर लोगों से भी किधर है भाई, वो किधर है, वो होटल किधर, वो आशियाना किधर है, और वो फलां किधर है, वो किधर है, क्योंकि हमें वहां जाना है। ढूंढते ढांढते लोग शादियों में पहुंच रहे होते हैं, शादी हॉल्स में कई घंटों से सफर करके लोग आ रहे होते हैं। तो जब अल्लाह का इन्विटेशन दारुस्सलाम का है, और अल्लाह का सलाम की यही आयत स्लोगन है हमारे कोर्स सुबुल असलाम की। परसों गालिबन आपने मुझे एक मैसेज दिया था कि सुबुल असलाम कोर्स का एक रजिस्ट्रेशन आ गया। मैंने कहा ये हुआ कब? क्लास में बात हुई थी, कल आपने बताया, किसी सिस्टर ने खुद से ही वो सुन ली बात जो मैं कहती रहती हूँ, और पता भी है वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि इनसे कहीं एक साल में यहाँ क्रैश कोर्स कराएं तो मेरा रोल नंबर 1 होना चाहिए। बगैर फॉर्म फिल किए उन्होंने, हमारे पास फॉर्म भी नहीं, कागज़ पे साइन करके दे दिए मेरा नाम डाल दें, अल्लाह उनका ये कबूल कर ले। इतना वाला मालूम भी नहीं याद। लेकिन मैं और आप जब हमें सबीलुल जन्नत का इन्विटेशन मिलता है, जब हमें सुबुल सलाम का इन्विटेशन मिलता है, तो हमारा उस पर रिस्पॉन्स क्या होता है? हम क्यों डरते हैं फिर? फिर हम क्यों नहीं अल्लाह ताला की तरफ चलते? इतने अंदेशे, इतना खौफ क्या होगा? देखिए आपने दौरा कुरान शुरू किया, कई खौफ थे आपके जहनों में, 10 पारे हो गए, और मैं कल से सोच रही हूँ हाय 1/3 खत्म, 2/3 रहेगा, ये 2/3 तो फिसलेगा, पता भी नहीं चलेगा, आप 20वें पारे पे आ जाएंगे, और आखिरी पारे आखिरी रातें ऐसे गम गम में गुजर जाएंगे कि अब ये आखिरी धाका चल रहा है। रमजान शुरू हुआ खत्म हो रहा है, बड़े बड़े कोर्सेज शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, सब जीते हैं, ये जितने वॉलंटियर्स आपको दिख रहे हैं ये कोर्सेज में गुजरे में चल पड़े, जी पड़े, जिंदगी सलामतियों वाली बन गई, कई चीजें जान से छुट गई। तो यहाँ अल्लाह से दुआ करें और अपने लिए कोई कमिटमेंट करें। अब मैं शायद को पढ़ूंगी और आप अपने पास कमिटमेंट खुद लिखेंगे कि वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम, और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। इसका जवाब आप लिख लें। हिदायत इसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया इनके लिए भलाई है और मजीद फजल। ये मजीद फजल क्या? यानी आपने कोई कमिटमेंट की, खुशखबरी भी साथ ही आ गई कि आपने तो भी सिर्फ नीयत की है ना, अल्लाह की पुकार पे लब्बैक का है, तो अल्लाह ने आपके लिए अहसनुल हुस्न व ज्यादा। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा हुस्ना तो हमें समझ आ रहा है, जन्नत है, पैराडाइज, ये ज्यादा क्या है? तो उस पर अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ये ज्यादा अल्लाह के चेहरे का दीदार है। अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल होने के बाद बुलाएगा और फिर उनसे कहेगा तुम मुझसे खुश हो? वो कहेंगे अल्लाह हम क्यों ना खुश हो, सब कुछ तो दे दिया, हमारे चेहरे साफ कर दिए, चमका दिया, हमें जहन्नुम से बचा लिया, जन्नत में है, सब है। कहा कुछ और मांग लो, कुछ और कुछ है? कहा सब मिल गया। कहा आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा कि जिसको तुम्हें पहले नहीं दिया, और वो क्या? कि आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, मैंने तुम्हें अपनी रजा दे दी। और फिर अल्लाह ताला अपने चेहरे से निकाब उठा देंगे, और अल्लाह के चेहरे को देखकर वो लोग वुजूहुन यौमइज़िन नासिरा इला रब्बिहा नासिरा वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा, उस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, फ्रेश, खूबसूरत, फेशियल से भी ज्यादा चमक, सजे संवरे, ऐसी प्यारी फाउंडेशन कि चेहरे पे एक नजर ना हटे। क्यों? कि अल्लाह को देख रहे होंगे। आप और मैं सोचिए एक लम्हे के लिए, मैं इस वक्त आपको सवाब और गुनाह के चक्कर में नहीं डाल रही, अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, कभी इतने प्यारे आसमान को देखकर दिल में नहीं आता कि अल्लाह मैं तुझे भी देखना चाहती हूँ? मूसा ने क्यों कहा कि रब यारीनी, मुझे दिखा अपना चेहरा? क्यों मूसा के दिल में ख्वाहिश आई? मोहब्बत थी। मुझे कब आखिरी बार ख्याल आया? तसव्वुर में, किसी को भी तो देखने का अरमान होता ही है ना, तमन्ना भी होती है, अमीर लोगों को, मशहूर लोगों को, बड़े लोगों को जिनसे मोहब्बत होती है, अल्लाह से मुलाकात का कितना ख्याल है। तो उसके लिए आज तैयारी करनी है, क्या मैं इस चेहरे को अल्लाह के सामने पेश कर सकती हूँ। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामले फरमाए। होगा क्या, वला यरहक वजूहहुम कतरुन, इनके चेहरों पर ना तो स्याही होगी और ना जिल्लत, और वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह मज्जालना मिन्हुम, दुआ करें अपने लिए, अल्लाह मुझे जन्नत में भी ले जाना और जन्नत में भेजकर अब मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना, क्योंकि मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। इसीलिए फरमाया, वल्लज़ीना कसबू सय्यिआति जज़ाउन सय्यिआतिन बिमिस्लिहा, और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई इनकी बुराई जैसी है वैसा ही बदला पाएंगे। जिल्लत इन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से इनको बचाने वाला ना होगा। इनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छा रही होगी जैसे रात के स्याह पर्दे इन पर पड़े होंगे। वो दोजख के मुस्तहक हैं, वो दोजख के मुस्तहक हैं और जहां वो हमेशा रहेंगे। इसको हाईलाइट कीजिए, किताम मिन अल्लैल मुस्लिमा। देखिए, दुनिया में किसी का रंग गोरा है कि काला, इससे उसकी अल्लाह के साथ मोहब्बत या नेकी बदी का कोई ताल्लुक नहीं है, सब एक जैसे हैं। काला हबशी बिलाल अल्लाह को इतना प्यारा लगा कि काबा की छत पे आ गए, और अबू लाहब जिसके मुंह से खून उछड़ता था इतना गोरा चिट्टा कि लोग उसको शोलों का बाप कहते थे। अबू लाहब उसका नाम नहीं था, अब्दुल उज्जा नाम था, लेकिन उसका लकब था कि गोरा और चिट्टा। मुंह गालों से ऐसे लगता था जैसे खून भड़क रहा है, तो कहा ये शोलों का बाप है। इस तरह से बयान किया गया, लेकिन अल्लाह को अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यामत के दिन चेहरों की स्याही महरूमी की अलामत है। काम ना करने का एक गिल्ट भी तो होता है ना, जिंदगी को जाया करने का गिल्ट उस दिन लोगों के चेहरों पर स्याहियां डाल देगा। और मैं जब यह आयतें पढ़ती ना, मेरे दिल में तवा आ जाता है, काला स्याह। अल्लाह कहते हैं उनके फीचर्स भी नहीं दिखेंगे, पर्दे पड़े होंगे स्याह, रात के पर्दे, और वह दोजख के साथी हैं जहां हमेशा रहेंगे। काम जो स्याह थे, स्याह करतूत करने वालों को अल्लाह स्याह जहन्नुम में डाल देगा। और जिस रोज हम इन सब को एक साथ अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया कहेंगे, ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी, फिर हम इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे। अब शिर्क की कबाहतें देखें, और इनके शरीक कहेंगे, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। यहाँ ये इबादत का लफ्ज कौन सी इबादत है, दुआ, लिख लीजिए, शिर्क फी दुआ का जिक्र है। जिंदगी भर जिन पीरों, मुरीदों, फकीरों और बड़े लोगों के नाम ले लेकर लोगों से दुआएं की, क्यामत के दिन ये हालात होंगे, वो इनसे बेनियाज होंगे। देखिए, नेक लोग थे, मिसाल है जिनको लोग आज दाता हजवेरी कहते हैं, मेरे गुमान के मुताबिक वो साहिब तौहीद थे, मवाहिद थे, कशफुल माजूब उनकी किताब है, तौहीद से भरी हुई। वो सारी जिंदगी लोगों को एक अल्लाह से जोड़ते रहे, लोगों ने उनके दुनिया से जाते ही उनको पूछना शुरू कर दिया। ये ऐसी है कि जिससे आपको मोहब्बत हो, जिससे आपको अल्लाह का दीन मिले, आप उसी को पूछने लग जाए कि चूंकि इसके जरिए हिदायत मिली इसको पूछो। इसी को पर्सनैलिटी वर्शिप कहते हैं। यही पहले दौर में शिर्क का जरिया बनी, और आज इसी को पर्सनैलिटीज के नाम पर लोगों ने इतना बड़ा कर दिया कि बस उस पर्सनैलिटी के अलावा किसी की बात नहीं सुनेंगे। गोया के दीन पूरा हो गया, हुज्जत तमाम हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ऐसे तमाम शिर्क क्यामत के दिन खुलेंगे और लोग उस वक्त परेशान होंगे। और आप देखिए, वो बुजुर्ग इनसे क्या कहेंगे, तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। आज अगर जीसस गॉड के नारे क्रिश्चियंस लगाएं भी, तो कल हजरत ईसा यही बोलेंगे, मैंने कब कहा था कि तुम मेरी इबादत करो, मुझे तो नहीं पता। और उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा, और सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे, और वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। क्या हाल होगा, वो कहते हैं ना कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था, जिन पे रिलाई करते थे, वही लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो आप बताइए, ऐसे लोगों की हसरत क्या होगी। इनसे पूछो, कौन तुमको आसमानों जमीन में रिस्क देता है, ये समात और बिनाई की कुवतें किसके इख्तियार में है, कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है, कौन इस नज़्म-ए-आलम की तदबीर कर रहा है। वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह, یعنی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ اس سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، رب کو مانتے تھے، الہ کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ رب کو ماننے کے بعد کوئی پابندی نہیں لگتی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کریٹر گاڈ کو ہم مانتے ہیں، لیکن ایڈوائزر گاڈ کو نہیں مانتے. وجہ یہ ہے کہ بس اللہ کو رب کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ یہ سب کچھ پیدا کیا اللہ نے، یعنی یہ نیچر نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ لا آف نیچرز نہیں ہے، یہ اللہ کے لاز ہیں، تو پھر ان کو بھی ماننے کی ضرورت ہے. پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہتا ہے. ہائی لائٹ کیجیے سورہ یونس کی یہ بڑی اہم آیت ہے، فما زباد الحق کی علت دلال. حق راستے کو جب آپ چھوڑیں گے تو اس کے بعد کسی نہ کسی گمراہی والے راستے پہ پڑیں گے. اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کو یہاں آنا تھا قرآن سننے کے لیے، پیچھے سے تو بہت سارے راستے ہوں گے، آپ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے آئے، لیکن جو ہی آپ اسکول کے پاس پہنچے تو بعض دفعہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. بس اگر آپ اس راستے کو چھوڑ دیتے، اس روڈ کو چھوڑ دیتے، آپ ادھر ادھر ابھی بھٹک رہے ہوتے، ابھی اسکول میں نہ پہنچے ہوتے. کیوں؟ کہ حق راستے کو چھوڑتے ہی باطل راستے ہیں. جب قرآن اور اللہ کی رضا کی بات کو ہم چھوڑتے ہیں تو کسی نہ کسی شیطانی راستے پہ چلے جاتے ہیں. فرمایا فانا تصرفون، آخر یہ تم کدھر پھرائے جاتے ہو؟ اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہیں رہیں گے. یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے لکھ دیا گیا کہ سن کے بھی نہیں سنیں گے، مان کے بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ دل میں تعصب تھا. اللہ صرف اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں خود کو بدلنے کی نیت ہوتی ہے. قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں آتی، قرآن سننے سے ہدایت نہیں آتی، قرآن کے مطابق خود کو چینج کرنے کی نیت سے ہدایت ملتی ہے. ہم سب پڑھ رہے ہیں، 10 پارے ہم سب نے پڑھ لیے، ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت لینے کے لیے پڑھے گا. آپ دیکھیے نا کہ کوئی اخبار بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس سوچ سے پڑھتے ہیں نا کہ آپ اس سے خبریں لیں گے، سنیں گے، انفارمیشن لیں گے، تو کیا انفارمیشن لینے سے آپ اس جگہ کا حصہ بن جاتے ہیں؟ مثال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال خانہ کعبہ میں 1 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اب یہ خبر آپ نے اخبار میں پڑھی، آپ نے خبر پڑھی نا، کیا آپ ادھر حج کرنے والوں میں شامل ہو گئے؟ نہیں. بس جیسے کچھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی وہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، جسٹ دے گیٹ دا انفارمیشن. ہاں، ان کو حج کرنا ہے وہاں، ان کو ان حاجیوں میں شامل ہونا ہے اگلے سال، تو اس کے لیے ان کو اس کی کوشش اور تیاری کرنی پڑے گی. پھر فرمایا ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کو دہرائے بھی؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دہرائے گا بھی، پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جاتے ہو؟ جو ایک ایٹم نہیں بنا سکے وہ اسے اور بڑی چیزیں کیا بنائیں گے. ان سے پوچھو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی. اب دیکھیے مشرکوں کو بے بس کرنے والے یہ دلائل ہیں، اور یہ دلائل ہم بھی دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ماں سوا میں الجھے ہوں. فرمایا ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ تو صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ ایسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ آپ نوٹ کریے اس آیت میں، اور اس پہ میں نے کئی دفعہ درس دیا ہے، ابھی ریسنٹلی بھی کہیں دیا تھا، کہ جس میں ہدایت لفظ کے ڈیفرنٹ فارمز ہیں، یہدی، پھر یہدی، پھر یہدا، پھر اسی طرح سے ہدایت کی بات ہے. تو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے، جو تڑپ کرتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، ان کو ملے گی، باقی تو پاس سے گزر کے چلے جائیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. فرمایا حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. یعنی جو فگرز اینڈ فیکٹس ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اسمپشنز کی کیا اہمیت ہے؟ آپ ایزیوم کر لیں کوئی چیز اور آپ بالکل گن کے 1, 2, 3 کر کے بتائیں، فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. تو کچھ لوگ قرآن کے اس 1, 2, 3 کو چھوڑ کر صرف اسمپشن پہ رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہاں ایک تنقید ہے اس بات پہ کہ I think I will go to Jannah. آئی تھنک اٹس رائٹ. یہ کلچر ختم کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ قرآن کے کنفرم مسائل اور اتنی یونیورسل ریئلٹیز کو چھوڑ کر کہتے ہیں آئی تھنک اللہ ول ڈو دس، آئی تھنک اللہ از ناٹ سو مین، نعوذ باللہ. ایسے باتیں کرنے والے پھر दिन ब दिन अमल से दूर हो जाते हैं। कहा हालांकि गुमान हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इसको खूब जानता है। वमा काना हाज़िल कुरआन युफ्तरा, और ये कुरान वो चीज नहीं जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तसनीफ कर लिया जाए। आपने नोट किया कितनी दफा कुरान का लफ्ज अभी तक गुजर चुका है, यहाँ फिर आ गया। बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका है इसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि यह फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसको खुद लिख लिया है? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो इसे तो एक सूरत इस जैसी तसनीफ करके लाओ, और एक अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में आई ही नहीं और जिसका माल भी इनके सामने नहीं आया, इसको उन्होंने ख्वाम हट झुटला दिया इसको उन्होंने झुटला दिया। इसी तरह तो इनसे पहले के लोग भी झुटला चुके हैं। फिर देख लो कि इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब इन मुफसिदों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दो, हाईलाइट कीजिएगा, क्या कह दो इनको? फकुल ली अमली वलकुम अमलुकुम, ली अमली वलकुम अमलुकुम, मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। क्या पता चला? लोगों के प्रेशर में आकर अपना अमल ना बदलो, बल्कि कह दो कि मैं अपना अच्छा अमल नहीं छोड़ूंगा, तुम बुरा अमल मेरे कहने पे अगर नहीं छोड़ते। फिर आप देखिए यहाँ चैलेंज है, कुरान में पहले भी यह चैलेंज गुजर चुका, दूसरी दफा यहाँ आ गया कि इस किताब जैसी लाओ। आज तक कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। कोई इज्म इस कुरान के इज्म से टकरा तो सकता है, लेकिन इससे बेहतर कुरान इज्म लोगों को नहीं दे सकता। लोगों ने इतना कुछ चेक किया, इस्लाम को छोड़कर इसको रिप्लेस करते हैं, लोगों को कुछ और चीजें सिखाते हैं, आज तक तो नहीं आया और कभी भी नहीं आएगा। तो क्या पता चला कि इस कुरान को मानना है? जब लोग आपको इस किताब से रोकने की ख्वाहिश रखें, कोशिश करें, तो क्या करना है? अपने अमल को और मजबूत करना है। मसला कहां बिगड़ता है? जब हम उनके कहने में अपना अमल भी छोड़ते हैं। और अपने आप से पूछिए, जब अल्लाह ये कह रहे हैं रब्बुका अलमु बिल मुफ्सिदीन, तो पूछिए खुद से कि अल्लाह की नजरों में मेरा क्या मुकाम है? हम दुनिया में बड़े बन जाएं और अल्लाह की नजरों से गिर जाएं, हमें क्या मिलेगा?